سورت رعد پڑھیں گے ہم آگے انشاءاللہ، جس میں آپ دیکھیں گے کہ اگر واقعی لوگوں کے لیے نفع مند بننا ہے تو اس کے راستے کیا ہیں. 43 آیتیں ہیں اس میں، تلاوت سنیں گے ابتدائی آیات کی.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم را، تلك آیات الكتاب. والذی انزل الیک من ربک الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون.
اب دیکھیے کہ سورت یوسف مدنی سورت تھی نا، اور مدنی سورتوں میں عموماً کردار سازی کے لیے اس طرح کی چیزیں بہت کم آتی ہیں، اس میں زیادہ مسائل اور احکامات آتے ہیں. اور سورت یوسف پڑھنے کے بعد اب اگلی سورت سے پہلے چند باتیں جس سے انشاءاللہ ہم دونوں کا رب بھی سمجھیں گے. پوری سورت میں یوسف علیہ السلام کے ظاہری حسن کا کوئی قصہ نہیں تھا، لیکن اندر کا حسن تھا اور رشتوں کو نبھانے کا حسن تھا اور جھگڑوں پہ قابو پانے کا تھا. سورت رات جو اس وقت آپ کے میرے سامنے ہے، اس کے اندر جوش ہے. اور رات کہتے ہیں تھنڈر سٹرم کو. بالکل بندہ مومن کی زندگی میں دکھ سکھ کی آندھیاں بھی چلیں گی، لیکن اگر اس نے لوگوں کو نفع دینے کی نیت کر لی ہے تو وہ کیا کرے گا، یہ چیز ہم سورت رات میں سیکھیں گے. پھر اسی طرح سے ہم نے سورت یوسف میں تین بڑی خوبیوں کا تذکرہ دیکھا، تقوی، احسان اور صبر. یاد رکھیں یہ تین خوبیاں اگر آپ میں آ گئی ہیں اور اب سورت رات پڑھ کر آپ اپنے اندر ایک نیا ایمان محسوس کریں تو آپ ہیں وہ بہترین برتن جس میں علم اور معرفت کا پانی آئے گا. اور پھر یہ بھی سیکھا کہ جتنی زندگی میں آزمائشیں زیادہ ہوتی ہیں بندہ اتنا مضبوط ہوتا ہے. آپ اٹھیے اللہ کے لیے، دین سیکھیے، دین سکھائیے، لوگوں کی مدد کیجئے، چاہے آپ مشکلات اور آزمائشوں میں پڑے ہوئے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا، حسن دیا، اچھا کردار دیا، لیکن انہوں نے ان ساری چیزوں کو اللہ کا قرب پانے کے لیے اور اللہ کے بندوں کے فائدے کے لیے استعمال کیا. اور یہ بھی سیکھا کہ قدرت کے باوجود معاف کر دینا یہ پیغمبرانہ اخلاق ہوتا ہے. اور ایمان کی اصل دیکھی، یعقوب علیہ السلام کی صورت میں کیسے امید اور خوف کے بیچ میں تھے. اللہ سے ہمیشہ حسن ظن کرنا چاہیے، اور اگر توجہ آخرت کی کامیابی پر ہوگی تو دنیا کی کوئی پریشانی آپ کو پریشانی نہیں لگے گی. تو اپنا فوکس آخرت پہ کیجئے، دنیا کے غم ہلکے ہو جائیں گے. اور ایک جملہ لکھ لیجئے کہ معاف کرنے سے آپ کا کچھ بھی نہیں جائے گا، لیکن اللہ آپ کو عزت دے دے گا. ماضی نہ بدل سکیں، مستقبل کو خوبصورت بنائے گا آپ کا دوسروں کو معاف کرنا. اور جتنی بڑی آزمائش آئے گی اس کے بعد مدد بھی اللہ کی اتنی آتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے شیطان کے شر سے بچائے. آئیے اس سورت کو پڑھتے ہیں اس سوچ کے ساتھ کہ اللہ تو اس سورت کو ہماری زندگی کے اندر ایسے جگہ دے دے کہ ہم کہیں ہم نے فلاں دن سورت رات پڑھی تھی اور وہ دن اور آج کا دن ہم اللہ کے کام کے بن گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم را، تلک آیات الکتاب. टॉपिक लिखिए आयत 1 से 7, इल्म का पानी तो एक जैसा मिला लेकिन फलों का जायका अलग अलग हो गया। इसमें आप कायनात के नाते से ज़मीन का और पानी का रब्त देखेंगे और यही रब्त है इल्म लेने और इल्म देने वाले में। इस वक्त भी आपको मुझे इल्म का पानी मिल रहा है, बोलने वाला एक ही लफ्ज़ बोल रहा है लेकिन सुनने वालों में हर एक को इसका इतना फ़ायदा नहीं होगा, एक को ज़्यादा होगा एक को कम। तो क्या हम इसमें सीखेंगे कि एक ही उस्ताद से पढ़े हुए 100 लोग मुख्तलिफ तरह के बन जाते हैं। अपने लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह यहाँ से उठने के बाद हमारा टेस्ट इतना अच्छा हो कि हम इंसानियत को नफ़ा दे सकें। ये कुरान की आयतें हैं, जो कुछ आपकी तरफ आपके रब की जानिब से उतारा जाता है सब हक है, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। अल्लाह हमें ईमान वाला कर दे। अल्लाह वो है जिसने आसमानों को बग़ैर सतूनों के बुलंद रखा है कि तुम इसे देख रहे हो, फिर वर्ष पर करार पकड़े हुए है, इसी ने सूरज और चाँद को मातहती में लगा रखा है, हर एक म्याद मुअय्यन पर गश्त कर रहा है, वही काम की तदबीर करता है, अपने निशानात खोल खोल कर बयान कर रहा है कि तुम अपने रब की मुलाकात का यकीन कर लो। इसी ने ज़मीन फैला कर बिछा दी और इसमें पहाड़ और नहरें पैदा कर दी और इसमें हर किस्म के फलों के जोड़े दोहरे दोहरे पैदा कर दिए, वो रात को दिन से छुपा देता है, यकीनन गौर व फिक्र करने वालों के लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं, और ज़मीन में मुख्तलिफ टुकड़े एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये आपकी बात है, आप सब यहाँ छोटी छोटी ज़मीन की टुकड़ियाँ हैं, आपके ऊपर इल्म का कुरान का वही का पानी पड़ रहा है, बैठे हुए साथ साथ है लेकिन आपके दिलों पर असर मुख्तलिफ हो रहा है। जो जिस रंग से सुनेगा, जिस सोच के साथ सुनेगा, उसको उससे उतना ही फ़ायदा होगा। अब क्या होगा, और अंगूरों के बागात हैं और खेत हैं और खजूरों के दरख्त हैं, शाखदार और बाज़ ऐसे हैं जो बेशाख हैं, सभी एक ही पानी पिलाए जाते हैं, फिर भी हम एक को एक पर फलों में बर्तरी देते हैं। इसमें अक्लमंदों के लिए बहुत सी निशानियाँ हैं। कभी आपको इस पर हैरत हुई, आम के दरख्त को भी जो पानी दिया जाता है वो फीका होता है, और करेले की बेल पे जो पानी पड़ता है वो भी फीका है, तो वो मीठा और ये कड़वा क्यों हो गया? बस यही इल्म है। ये कुरान कुछ को और मीठा कर देगा, कुछ को और कड़वा कर देगा। अगर तुझे ताज्जुब हो तो वाकई इनका कहना अजीब है, क्या जब हम मिट्टी हो जाएंगे तो क्या हम नई पैदाइश में होंगे? यही वो लोग हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार से कुफर किया, यही हैं जिनकी गर्दनों में तौक होंगे, और यही हैं जो जहन्नुम के रहने वाले हैं, जो इसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। अल्लाह हमें जहन्नमी होने से बचा ले। और तुझसे सज़ा तलबी में जल्दी कर रहे हैं राहत के आने से पहले ही, यकीनन इनसे पहले सज़ाएं बतौर मिसाल गुजर चुकी, और बेशक तेरा रब अलबत्ता बख्शने वाला है लोगों के बेजा जुल्म पर, और ये भी यकीनी बात है कि तेरा रब बड़ी सख्त सज़ा देने वाला है। और काफिर कहते हैं कि इस पर इसके रब की तरफ से कोई निशानी यानी मौजज़ा क्यों ना उतरा? बात यह है कि आप तो सिर्फ आगाह करने वाले हैं और हर कौम के लिए हादी है, यानी अम्बिया कराम का काम रास्ता दिखाना होता था, मौजज़े देना नहीं। क्या सीखा? आयत 6 में अल्लाह के हिल्म और करम की बात है कि लोगों के जुल्म व सितम के बावजूद अजाब में जल्दी नहीं करता बल्कि मोहलत देता है, बाज़ दफ़ा तो इतनी तख़ीर कर देता है कि मामला क़यामत पर छोड़ देता है। ये इसके हिल्म और करम और अफ़ो दरगुज़र का नतीजा है, वरना फ़ौरन पकड़ करता और अजाब दे देता तो ज़मीन पर कोई भी ना बचता। आपने मैंने भी यही सीखना है, लोगों को पहली गलती पे मत पकड़िए, लोगों को फ़ौरन मत टोकिए, उनको गलतियाँ करने का मौका दीजिए और फिर उनकी इस्लाह के लिए दुआ कीजिए। और क्या सीखा हमने? अल्लाह की निशानियों से सबक लेना। क्या मैं जल्दी में बुराई तो नहीं मांग लेती? मेरा जायका कैसा है, मेरे अमल और रवैये कैसे हैं? मुश्किल तरीन बात है। आप सब आज बैठकर अपनी एनालिसिस करें, मेरा टेस्ट क्या है? मेरे साथ रहने वालों को मैं कड़वी लगती हूँ, मीठी लगती हूँ कि खट्टी लगती हूँ, और मेरा उनसे रवैया क्या है? अल्लाह लोगों को संभलने और सुधरने का वक्त देता है, मैंने भी इससे फ़ायदा उठाना है, और अल्लाह सारे कामों की तदबीर करता है और वो मोमिनों की मदद करता है। क्या मैं दीने हक के रहनुमा की बात सुनती और मानती हूँ? अल्लाह हमें मानने वालों में बना दे। आगे लिखिए आयत 8 से 18, टॉपिक स्लैश करके दूसरा टॉपिक लिखिए, उरूज की तरकीब, रेसिपी ऑफ सक्सेस। अल्लाह कौमों के साथ क्या मामला करता है, और इस सूरत का मिजाज ही इज्तमाईयत वाला है। फरमाया, अल्लाह यालमु मा तहमिलु कुल्लु उन्सा वमा तगीदुल अरहामु वमा तज़दाद। मादा औरत अपने पेट में जो कुछ रखती है अल्लाह इसको बखूबी जानता है, और पेट का घटना बढ़ना भी हर चीज़ इसके पास अंदाज़ा है, यानी आप डॉक्टर्स जब तक अल्ट्रासाउंड ना करें आप नहीं बता सकती कि पेट में बेटा है कि बेटी। चले ये भी पता चल गया तो खूबसूरत है कि बदसूरत, अकलमंद होगा कि बेवकूफ़, कितना जिएगा। लेकिन अल्लाह बग़ैर किसी आले के इस्तेमाल के ये सब कुछ जानता है। ज़ाहिर और पोशीदा का वो आलम है, सबसे बड़ा सबसे बुलंद वाला। तुम में से किसी का अपनी बात को छुपा कर कहना और बावाज़े बुलंद कहना, और जो रात को छुपा हुआ हो और जो दिन में चल रहा हो, सब अल्लाह पर बराबर और यकसा है। इसके पहरेदार आगे और पीछे मुकर्रर हैं, जो अल्लाह के हुक्म से इसकी निगहबानी करते हैं। किसी कौम की हालत अल्लाह नहीं बदलता। इसको लिख लें, इस पे शेर है ये वाला, जब तक कि वो इसे खुद ना बदल लें जो इनके दिलों में है। हालात कब बदलेंगे? जब हालत बदलेगी। और हालत कब बदलती है? जब कुरान पढ़ते हैं। अल्लाह ताला हमारी हालत भी बदल दे। अल्लाह ताला जब किसी कौम की सज़ा का इरादा कर लेता है तो वो बदला नहीं करता, और सिवाय इसके कोई भी इनका कारसाज नहीं। वो अल्लाह ही तो है जो तुम्हें बिजली की चमक डराने और उम्मीद दिलाने के लिए दिखाता है, और भारी बादलों को पैदा करता है। गरज इसकी तस्बीह तारीफ़ करती है, और फरिश्ते भी इसके खौफ से, और वही आसमान से बिजलियाँ गिराता है और जिस पर चाहता है इस पर डालता है। कुफार अल्लाह के बारे में लड़ झगड़ रहे हैं, और अल्लाह ताला सख्त कुव्वत वाला है। इसी को पुकारना हक है। जो लोग औरों को इसके सिवा पुकारते हैं वो इनकी पुकार का कुछ जवाब नहीं देते, मगर जैसे कोई शख्स अपने दोनों हाथ पानी की तरफ फैलाए हुए हो किसके मुंह में पड़ जाए, हालांकि वो पानी इसके मुंह में पहुंचने वाला नहीं। इन मुनकरों की जितनी पुकार है सब गुमराही में है। अल्लाह ही के लिए है ज़मीनों आसमान की सब मखलूक खुशी और नाखुशी से सजदा करती, और इसके साए भी सुबह शाम। आप पूछिए कि आसमानों ज़मीन का परवरदिगार कौन है, कह दीजिए अल्लाह। कह दीजिए क्या तुम फिर भी इसके सिवा किसी और को हिमायती बना रहे हो, जो ख़ुद भी अपनी जान के भले और बुरे का इख्तियार नहीं रखते। कह दीजिए कि अंधा और बीना बराबर हो सकता है, आप जवाब दें, या क्या अंधेरी और रोशनी बराबर हो सकती है, या जिन्हें ये अल्लाह का शरीक ठहरा रहे हैं उन्होंने भी अल्लाह की तरह कोई मखलूक पैदा की है, कि इनकी नज़र में पैदाइश मुश्तबे हो गई हो। कह दीजिए कि सिर्फ़ अल्लाह ही तमाम चीज़ों का खालिक है, वो अकेला और ज़बरदस्त गालिब है। इसी ने आसमान से पानी बरसाया, फिर अपनी अपनी वसत के मुताबिक नाले बह निकले। ये है गौर व फिक्र वाली आयत इस हिस्से में। फिर पानी के रेले ने ऊपर चढ़ी घास को उठा लिया, और इस चीज़ में भी जिसको आग में डालकर तपाते हैं जेवर या साजो सामान के लिए, इसी तरह की झाग हैं। इस तरह अल्लाह ताला हक और बातिल की मिसाल बयान फरमाता है। अब झाग तो नकारा होकर चली जाती है, लेकिन जो लोगों को नफ़ा देने वाली चीज़ है वो ज़मीन में ठहरी रहती है। अल्लाह ताला इसी तरह मिसालें बयान करता है। आपने मैंने क्या बनना है? नफ़ा मंद बनना है। वम ममा यन फो नासु फयम कुस, बस वही बचेगा। आज अबू हुरैरा का नाम क्यों बाकी? नफ़ा दिया। इमाम बुखारी का नाम क्यों? नफ़ा दिया। इवन दुनिया मैदान में भी आप देखिए कि जिन लोगों ने कुछ काम किया अल्लाह ने उनको बचा लिया। आपका मेरा दिल करता है कि रहती दुनिया तक हमारा नाम रहे, तो लोगों को नफ़ा दीजिए। जिन लोगों ने अपने रब के हुक्म की बजा आवरी की, इनके लिए भलाई है, और जिन लोगों ने इसके हुक्म की नाफरमानी की, अगर इनके लिए ज़मीन में जो कुछ भी है सब कुछ हो और इसी के साथ वैसा ही और भी हो, तो वो सब कुछ अपने बदले में दे दें, यही है जिनके लिए बुरा हिसाब है, और जिनका ठिकाना जहन्नुम है, जो बहुत बुरी जगह है। क्या सीखा? बुखारी की रिवायत है 5010, आपने फरमाया तुम में से हर एक की पैदाइश 40 दिन तक इसकी माँ के पेट में जमा होती है, यानी बच्चा हर 40 डेज के बाद रूप बदलता है, फिर इतने में दिनों तक वो बसूरत खून रहता है, फिर इसके बाद वो गोश्त का लोथड़ा बनता है, फिर अल्लाह एक फरिश्ते को भेजता है जो चार बातें लिखता है, बच्चे का रिस्क, उसकी उम्र, अमल और नेक और बद होना। तो मत डरिए, अल्लाह ने आपकी मेरी तकदीर लिख दी है, दुआ कीजिए कि वो बेहतरियों की हो। फिर आप देखिए कि इस हिस्से में अल्लाह ने इंसानों से 5 सवाल किए हैं, जो आपने तर्जुमे में देखे। कौन से? आसमान और ज़मीन में रिस्क कौन देता है? नेमतों का मालिक कौन है? दुनिया का निज़ाम कौन चलाता है? ज़िंदा से मुर्दा को कौन निकालता है? मुर्दा से ज़िंदा को कौन निकालता है? आप सब फर्स्ट आए, आप सब के सारे जवाब बिल्कुल दुरुस्त हैं। क्या सीखा? अल्लाह ने हर चीज़ की मकदार मुकर्रर की है, मैंने राज़ी रहना है, अपनी हालत को खुद बदलना है, कोशिश करूंगी कि मैं सुस्ती को छोड़ दूं। बोलिए, आप में से किस किस को लगता है बाय द वे कि वो सुस्त है? मुझे लगता है अपने बारे में, मैं तो आपको साफ कहूंगी, शर्माऊंगी नहीं। अल्लाह मेरी सुस्तियां दूर कर दे। अल्लाह के सिवा कोई दूसरी हस्ती मेरी दुआ का जवाब नहीं दे सकती। अल्लाह से हक शनासी की दुआ करनी है कि अल्लाह हक को हक बनाकर दिखा, फिर मैं उनके साथ लग जाऊँ जो हक वाले हैं। और दुआ है कि अल्लाह हमारा ज़र्फ वसी कर दे। इस हिस्से में जो आयतें आई हैं, आयत नंबर बोल देती हूँ, आयत 17 और उससे अगली आयत, बहुत खूबसूरत आयत है। इस वक्त जल्दी में तो नहीं, कल इंशाल्लाह इसका रिकैप कराऊंगी। आपको अगर मौका मिल सके कल आने से पहले तो इनकी तफसीर सुनकर आइएगा। सबीलुल जन्ना में हमने इसमें डिफरेंट एग्जाम्पल्स को लेकर अपने लिए अमल के नुक्ते रखे हैं। अल्लाह ताला आपके वक्त में बरकत दे दे। आगे देखिए 19 से 26, उलुल अलबाब की सिफात और इंजाम। उलुल अलबाब कौन होते हैं? एक ख़ास वक्त तक मैं समझती रही दरवाज़ों वाले। बाब कहते हैं दरवाजे को, बाबे काबा, बाबे हरम। फिर पता चला ये बाब नहीं है, ये लुब से है, अक्ल। अलबाब कहते हैं अक्ल वाले। अल्लाह हमें अक्ल वाले बना दे। अफ़मन यालमु अन्नमा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिकल हक, क्या वो शख्स जो ये इल्म रखता हो कि आपकी तरफ आपके रब की जानिब से जो उतारा गया है वो हक है, उस शख्स जैसा हो सकता है जो अंधा हो? नसीहत तो वही कबूल करते हैं जो अक्लमंद हो। जवाब दीजिए, नहीं हो सकता उस जैसा। बोलिए, जो अल्लाह के अहदो पैमान को पूरा करते हैं और कौल इकरार को तोड़ते नहीं। ये अक्लमंदों की सिफात नोट करते जाइए। अल्लाह हमें अक्लमंद बना दे। और अल्लाह ने जिन चीज़ों को जोड़ने का हुक्म दिया वो इसको जोड़ते हैं, और अपने परवरदिगार से डरते हैं और हिसाब का सख्ती से अंदेशा रखते हैं। किस चीज़ को जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया? रिश्तों को जोड़ने का। तो नीयत करते हैं रिश्तों को जोड़ने की, तो बस फिर आप अक्लमंद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और वह अपने रब की रजामंदी की तलब के लिए सब्र करते हैं और नमाज़ों को बराबर कायम रखते हैं, और जो कुछ हमने इनको दे रखा है इसे छुपे खुले खर्च करते हैं, और बुराई को भी भलाई से टालते हैं। इन्हीं के लिए आकबत का घर है। कितने लोग नियत करते हैं कि बुराई का जवाब भलाई से देना। अल्हम्दुलिल्लाह, किल विद काइंडनेस इंशाल्लाह। हमेशा के रहने के बागात जहाँ ये खुद जाएंगे, और इनके बाप दादों और बीवी और औलादों में से भी जो नेकूकार होंगे इनके पास फरिश्ते हर दरवाजे से आएंगे। अल्लाह हमारे पास भी फरिश्तों को भेज देना। कहेंगे तुम पर सलामती हो इस सब्र के बदले में, क्या ही अच्छा बदला है इस दारे आखरत का। अल्लाह हमें सब्र वाला भी बना और इन खुशखबरियों को पाने वाला भी बना दे। और जो अल्लाह के अहद को इसकी मजबूती के बाद तोड़ देते हैं, और जिन चीज़ों के जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया इनको तोड़ते हैं और ज़मीन में फसाद फैलाते हैं, इनके लिए रहमत से दूरी है और इनके लिए बुरा घर है। अल्लाह ताला जिसकी चाहे रोज़ी बढ़ाता है और घटाता है। ये दुनिया की ज़िंदगी में मस्त हो गए, हालांकि दुनिया आखरत के मुकाबले में नहायत हकीर पूंजी है। तो क्या सीखा है 20 और उससे आगे? अहले दानिश यानी अक्लमंदों की सिफात। अल्लाह के अहद से मुराद वादा लस्त भी है, और अल्लाह के दिए हुए हुक्म हैं और मनहियात हैं, और बाहमी रबते और वादे और माहदे भी मुराद हैं जो आपस में हम एक दूसरे से करते हैं। अल्लाह हमें जोड़ने वाला बना दे। आप देखिए कि मुनाफिक की कुछ अलामतें हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं। अमानत में खयानत, बात में झूठ, झगड़ों में गालियाँ और वादा करके तोड़ना। इसके बरक्स आप देखिए कि मोमिनीन की सिफात आपने पढ़ी, वादे का पूरा करना। सोच लीजिए साथ साथ किसी से कोई वादा तो नहीं किया हुआ और जो भूल चुके हों। रिश्ते नातों को मिलाना, अजर क्या मिलेगा? जन्नतों के वारिस होंगे। और 25 में हमने जो खूबियाँ देखी उससे क्या पता चला कि मोमिनीन के बरखिलाफ़ कुछ लोगों की जो खूबियाँ होती हैं वो बुरी होती हैं। ना अल्लाह के हुक्मों का ख्याल और ऐसे लोगों का इंजाम बुरा, और ये रिश्तों को तोड़ते और सिला रहमी से दूर रहते हैं। आम हालत में नहीं पता चलता, जब आपके ऊपर कोई वक्त आता है ना तो कुछ खसलतें उस वक़्त खुलती हैं मुनाफिक की, और वो झूठ, मिलाने वाली चीज़ों को ना मिलाना, इमानत में खयानत, फसाद फैलाना, वादा खिलाफी करना और अल्लाह के अहद को तोड़ना होता है। अल्लाह ताला हमें सीखने वाला बना दे। क्या सीखा? अपने अंदर मोमिनीन और अहले दानिश की खूबियाँ पैदा करनी है, और अल्लाह की राह में कसरत से खर्च करना है, अपना मुहासबा करना है। क्या मेरे अंदर मोमिन की खूबियाँ हैं? क्या मैं सबके साथ सिला रहमी करती हूँ? क्या मैं बुराई का जवाब भलाई से देती हूँ? क्या मैं सिर्फ दुनिया की जिंदगी में मगन तो नहीं हो गई, और कहीं मेरी जात से फसाद तो नहीं फैलता, और क्या मुझे बुरे हिसाब से डर लगता। आगे है 27 से 31, टॉपिक लिखिएगा दिल की जिंदगी / जिक्र इलाही। देखिए हर चीज़ की खुराक होती है, जैसे मैदे की खुराक खाना, फेफड़ों की यानी लंग्स की खुराक ऑक्सीजन, तो दिल की खुराक क्या है? ब्लड और ज़िक्र इलाही। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। फरमाया वयकूलुल्लज़ीना कफ़रू लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुम मिन रब्बिही। और काफिर कहते हैं कि इस पर कोई निशानी यानी मौजज़ा इसके रब की तरफ से क्यों नाजिल नहीं किया गया। जवाब दीजिए कि अल्लाह जिसे गुमराह करना चाहे कर देता है, और जो इसकी तरफ झुके इसे रास्ता दिखा देता है। अल्लाह हमें गुमराही से बचा ले। जो लोग ईमान लाए इनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से इत्मीनान हासिल करते हैं। याद रखो अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को तस्कीन हासिल होती है। मैदे को सुकून कब मिलता है? जब खाना अंदर जाता है। लंग्स को सुकून कब मिलता है? जब ऑक्सीजन जाती है। इफ्तारी के वक्त में सांस ज़्यादा अंदर जाता है कि खाना? ऑक्सीजन ज़्यादा डालते हैं अंदर या पकौड़े? अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग ईमान लाए इनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से इत्मीनान हासिल करते हैं। याद रखो अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को तसल्ली होती है। जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए उनके लिए खुशहाली है और बेहतरीन ठिकाना। इसी तरह हमने आपको इस उम्मत में भेजा जिससे पहले बहुत सी उम्मतें गुजर चुकी। क्या आप इन्हें हमारी तरफ से जो वही आप पर उतरी है पढ़कर सुनाइए। ये अल्लाह रहमान के मुनकर हैं। आप कह दीजिए मेरा पालने वाला तो वही है और इसके सिवा दर हकीकत कोई भी लायक इबादत नहीं। इसी के ऊपर मेरा भरोसा और इसी की जानिब मेरा रुजू है। अगर बिलफर्ज के किसी कुरान के ज़रिए पहाड़ चला दिए जाते या ज़मीन टुकड़े टुकड़े कर दी जाती या मुर्दों से बातें करा दी जाती फिर भी वो ईमान ना लाते, ये मुझसे मांगते थे। अल्लाह ताला कह रहे बेकार बातें करते हो, ये सब हो भी जाता तो तुमने मानना फिर भी नहीं था। बात यह कि सब काम अल्लाह के हाथ में है, तो क्या ईमान वालों को इस बात पर दिल जमई नहीं कि अगर अल्लाह चाहे तो तमाम लोगों को हिदायत दे दे? याद रखिए हिदायत अल्लाह के हाथ में है। जब आप मांगते हैं तो अल्लाह दोनों हाथ से देता है। कुफार को तो इनके कुफर के बदले हमेशा कोई ना कोई सज़ा पहुंचती रहेगी या इनके मकानों के करीब नाजिल होती रहेगी, यहाँ तक कि अल्लाह के वादे का वक्त आ जाएगा। यकीनन अल्लाह ताला वादा खिलाफी नहीं करते। अल्लाह हमें भी वादे पूरे करने वाला बनाए। तो आयत 30 में दुआ देखी, हुवा रब्बी ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व इलैहि मताब। याद कीजिए इन दुआओं को, इंशाल्लाह आपका दिल अल्लाह से जुड़ेगा और ज़िक्र से दिलों को सुकून मिलता है। दुआ ज़िक्र की बेहतरीन इबादत है। क्या सीखा? जो अल्लाह से रजू करेगा हिदायत पाएगा। अल्लाह की याद दिलों का इत्मीनान है, तो हमारे दिल को सुकून मिलता है अल्लाह की याद से। कहते हैं कि काफिर को गम पहुँचता है तो लीकर स्टोर पर जाता है, और मोमिन को गम पहुँचता है तो वो ज़िक्र स्टोर पर जाता है। शराब में, कबाब में, गानों में सुकून नहीं मिलेगा, सुकून मिलेगा तो अल्लाह की याद में मिलेगा। खुद से पूछिए क्या मैंने अल्लाह पे भरोसा कर लिया, क्या अल्लाह को अपना मलजा और मावा समझती हूँ, हर मामले में अल्लाह से रजू करती हूँ, क्या अल्लाह को अपना रब मानकर मुतमईन हूँ? जवाब दीजिए, नहीं हुए अभी तक, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए 32 से 37 टॉपिक लिखिए ख्वाहिशात की पैरवी इल्म आने के बाद। वलकदस्तुख्सिया बिरुसुलिम मिन क़ब्लिक। यकीनन आपसे पहले के पैगंबरों का मजाक उड़ाया गया था और मैंने भी काफिरों को ढील दी फिर इन्हें पकड़ लिया, बस मेरा अजाब कैसा रहा। क्या वो अल्लाह जो निगेबानी करने वाला है हर शख्स की, इसके किए हुए आमाल पर इन लोगों ने अल्लाह के शरीक ठहराए हैं। कह दीजिए ज़रा इनके नाम तो लो, क्या तुम अल्लाह को वो बातें बताते हो जो वो ज़मीन में जानता ही नहीं, या सिर्फ ऊपरी ऊपरी बातें बता रहे हो? बात असल ये है कि कुफर करने वालों के लिए इनके मकर सजा दिए गए, और जिसको अल्लाह गुमराह कर दे इसको राह दिखाने वाला कोई नहीं। इनके लिए दुनिया की ज़िंदगी में अजाब है, यानी जिस दुनिया के लिए अल्लाह को नाराज़ किया वो दुनिया भी ना मिली, और आखरत का अजाब तो बहुत ही सख्त है। इन्हें अल्लाह के गज़ब से बचाने वाला कोई नहीं। इस जन्नत की सिफत, अब सुनिएगा ज़रा जन्नत की खूबियाँ। मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तकून। इस जन्नत की सिफत जिसका वादा मुत्तकियों को दिया गया ये है कि इसके नीचे नहरें बह रही हैं, इसके फल हमेशगी वाले हैं, इसका साया भी یہ ہے انجام پرہیزگاروں کا اور کافروں کا انجام دوزخ ہے. اللہ ہم سب کو یہ جنت دے. آپ سب جو یہاں بیٹھے ہوئے اور اس وقت بھی گھر میں بیٹھ کر اپنی اپنی جگہوں پہ سن رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کو یہ دعا لگا دے, ہم میں سے کسی کو جنت سے محروم نہ کر دے, کیونکہ یہ جنت کوئی سستا سودا نہیں ہے, بڑی مشکل سے ملتی ہے. جنہیں ہم نے کتاب دی وہ تو جو کچھ آپ پر اتارا جاتا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں, اور دوسرے فرقے اس کی بعض باتوں کے منکر ہیں. آپ اعلان کر دیجئے کہ مجھے تو صرف یہی حکم دیا گیا کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ شریک نہ کروں, میں اسی کی طرف بلا رہا ہوں اور اسی کی جانب میرا لوٹنا ہے. اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان بنا کر اتارا. اگر آپ نے ان کی خواہشوں کی پیروی کر لی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا, تو اللہ کے عذابوں سے آپ کو کوئی حمایتی ملے گا اور نہ بچانے والا. بخاری کی روایت ہے 2835, اللہ کے نبی نے فرمایا, آیت 35 کی روشنی میں یہ ہم دیکھیں گے, جنتی خوب کھائیں پئیں گے لیکن نہ تھوک آئے گی, نہ ناک بہے گی, نہ پیشاب, نہ پخانہ, مشک جیسی خوشبو والا پسینہ آئے گا اور اسی سے کھانا ہضم ہو جائے گا. جیسے سانس بے تکلف چلتا ہے اسی طرح تسبیح و تقدیس الہام کی جائے گی. دل سے اپنے لیے دعا کریں, اللہ ہمیں جنت دے دیں. اے اللہ وہ وقت لا کے ہم سب جنت میں بیٹھے ہوں اور اس موقع کو یاد کر رہے ہوں کہ ہم نے اس دن جنت کی دعا کی تھی, اللہ نے قبول کر لی. اور اللہ جہنم دور سے بھی نہ دکھانا, قبر کے عذاب سے بچانا, پل صراط کی سختیوں سے بچانا, میدان حشر کی آزمائشوں سے بچانا. کیا سیکھا؟ جو منہ میں آئے وہ نہیں کہنا. بولیے, اللہ کی سخت سزا ہے اسے ڈر کے رہنا ہے, قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط بنانا ہے, جنت کے وعدوں پہ یقین رکھنا ہے, خواہشات کی پیروی نہیں کرنی, دوسروں کو بھی قرآن کی دعوت دینی ہے, اپنا قرآن سے تعلق بڑھانا ہے. چلیے, آپ کی ساری انشاءاللہ پہ اللہ مسکرا دے. آگے ہے 38 سے 43, ٹاپک لکھیے تقدیر. علم الہی ہے, حکم الہی نہیں. تقدیر کے موضوع پہ کل بھی ایک سوال آیا تھا, اس کا جواب بھی اسی میں ہے. اور آپ سنیے گا, ایک پورا سیمینار ہوا تھا لندن میں تقدیر کے موضوع پہ, پھر تقدیر بمقابلہ تدبیر اس پہ بات ہوئی. الحمدللہ اس پہ بہت شرح صدر ہے. ہر سوال کے جواب میں اس پہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ ظلم اور زیادتی نہیں کرتا. آئیے پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ہم اس موضوع کو اچھی طرح سمجھیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ, ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے, ہم نے ان سب کو بیوی بچوں والا بنایا تھا, کسی رسول سے نہیں ہو سکتا کہ کوئی نشانی بغیر اجازت کے لے آئے, ہر مقرر وعدے کے لیے ایک لکھت پڑت ہے. یعنی ہر کام اپنے وقت پہ ہوگا, اللہ جو چاہے مٹا دے اور جو چاہے ثابت رکھے, لوہے محفوظ اسی کے پاس ہے. ان سے کیے ہوئے وعدوں میں سے اگر کوئی ہم آپ کو دکھا دیں یا آپ کو فوت کر لیں تو آپ پر تو صرف پہنچا دینا ہے, اور حساب تو ہمارے ہی ذمے ہے. دعا کیجیے, اللہم حاسبنی حسابیں یسیرا. کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو اس کے کناروں کی طرف سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ اللہ حکم کرتا ہے, کوئی اس کے احکام پیچھے ڈالنے والا نہیں, وہ جلد حساب لینے والا ہے. ان سے پہلے لوگوں نے بھی اپنی مکاری میں کمی نہ کی تھی, لیکن تمام تدبیریں اللہ کی ہیں. جو شخص جو کچھ کر رہا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے. کافروں کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ اس جہاں کی سزا کس کے لیے ہے. یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں. آپ جواب دیجئے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ گواہی دینے والا کافی ہے, اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. تو یہ تھی سورت رات. کیا سیکھا؟ دین والے انسان ہیں, ان پر تنقید نہیں کرنی, فیصلہ کن اور بہترین تدبیر اللہ کی ہے, اس پہ راضی رہنا ہے. حساب لیجئے اپنا, کیا میں اللہ سے ڈرتی ہوں؟ کیا میں نے حساب کی تیاری شروع کر دی؟ صرف اللہ کو گواہ سمجھتی ہوں, دوسروں پر تنقید تو نہیں کرتی, اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک لفظ پہ عمل کی توفیق دے.